भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। निशम्य प्रेष्ठमायांतम् वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च शाम्भोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छसित शयनं सनभोजनं निशम्य प्रेष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च शाम्भोजाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छसित निशम्य सुनकर प्रेष्ठम प्रियतम को आयांतम गृहागमन वसुदेवः वसुदेव कृष्ण के पिता महामना महामना उदारचेता अक्रूरः अक्रूर च तथा उग्रसेनः उग्रसेन च तथा रामः बलराम कृष्ण के बड़े भाई च तथा अद्भुत अलौकिक विक्रमः शौर्य पराक्रम प्रद्युम्नः प्रद्युम्न चारुदेष्णः चारुदेष्ण च तथा साम्बः साम्ब जाम्बवती सुतः जाम्बवती का पुत्र प्रहर्ष अत्यंत प्रसन्नता वेग त्वरा उच्छसित से प्रभावित शयन लेटना आसन बैठना भोजना भोजन करना। अनुवाद यह सुनकर सब लोग बोली यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं महामना वसुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न चारुदेष्ण तथा जामवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। सबसे पहले प्रभुपाद जी वसुदेव जी के बारे में बता रहे हैं और हमें समझना चाहिए कि ये कश्यप मुनि हैं पिछले जन्म के और तीन जन्मों के लिए भगवान इनके पुत्र बने। सबसे पिछले जन्म में ये सुतपा थे, इनकी पत्नी थी प्रश्नी थी। दूसरे जन्म में ये कश्यप हुए, इनकी पत्नी अदित हुई और तीसरे जन्म में ये वसुदेव जी हुए और इनकी पत्नी देवकी हुई। तो सूरसेन के पुत्र हैं और देवकी के पति हैं और श्री कृष्ण के पिता हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी अच्छी तरह से परिचय दे रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, किसके पिता हैं, किसके पति हैं, किसके पुत्र हैं और कुंती के भाई, ये भी ठीक है, कुंती के भाई और सुभद्रा के पिता, सुभद्रा के पिता हैं वसुदेव जी। सुभद्रा किसकी पुत्री हैं? वसुदेव तो पिता हैं, और सुभद्रा की माता कौन है? रोहिणी। सुभद्रा की माता कौन है? देवकी। निश्चित किसी को पता, निश्चित रूप से देवकी से नौ संतानें हुई हैं, आठ पुत्र और एक कन्या, एक एक साल के अंतर में ना। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। अर्जुन, अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, तो मामा के लड़के हैं अर्जुन, सुभद्रा की मामा के लड़के हैं, ठीक है ना। कैसे मामा? सुभद्रा के मामा के लड़के कैसे लगे अर्जुन? हाँ, सुभद्रा की तो सुभद्रा बुआ है, तो फूफा हुए ना। हाँ, गलत छपा है, फूफा की लड़के है ना। हाँ, अर्जुन सुभद्रा की फूफा के लड़के हैं, बुआ कुंती है ना, वो गलत छपा है ना। अंग्रेजी में तो क्या लिखा है? क्या?
सुभद्रा वाज मैरिड विद हर कजिन अर्जुना।
हाँ, कजिन तो ठीक है, अंग्रेजी भी ठीक है, हिंदी में अनुवाद सही नहीं है। वो फूफा की लड़की है, अर्जुन फूफा के लड़के हैं। वसुदेव को राजा उग्रसेन का मंत्री नियुक्त किया गया था। जब कंस जो है ना युवराज था, और कंस की बहन देवकी, कंस की सगी बहन नहीं है देवकी, कंस की चचेरी बहन है देवकी, तो जब वसुदेव के साथ विवाह हो रहा था तो फिर उसने जो है ना वसुदेव देवकी को भी बंदी बना लिया है ना, और उनका अधिकार सब छीन लिया। तो उग्रसेन के मंत्री थे और बाद में उग्रसेन के भाई देवक की आठ कन्याओं के साथ इनका विवाह कर दिया गया। देवकी उनमें से एक थी, देवकी सबसे छोटी हैं, देवरक्षिता और कई, मतलब देवकी से सात बड़ी बहनें, तो उनका विवाह वसुदेव जी से हो चुका था और देवकी सबसे छोटी पुत्री थी देवक की, जिसका विवाह हो रहा था। देवकी उनमें से एक थी, कंस उनका साला था, वसुदेव जी का साला, और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इसलिए स्वीकार किया कि वे देवकी का आठवां पुत्र उसे दे देंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से यह असफल रहा। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने सतश्रृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलाया और सारे कृत्य कराए। जब कृष्ण कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के अंतर्धान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और अर्जुन वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। द्वारका की जो मौसल लीला है जिसमें यदुवंश का संहार हुआ, तो सब यदुवंशी आपस के युद्ध में मारे गए, फिर भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी को छोड़ा अपने परम धाम चले गए और वसुदेव ने यह समाचार सुना, कृष्ण परम धाम में चले गए और पूरे यदुवंश का संहार हो गया। फिर अर्जुन आए, अर्जुन को समाचार मिला तो अर्जुन आए, तो अर्जुन की वसुदेव जी से बातचीत हुई और फिर अर्जुन के सामने वसुदेव जी ने अपना शरीर छोड़ा, अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि कृष्ण बलदेव से अंतर्धान हो गए वसुदेव के अंतर्धान होने के पूर्व, और अर्जुन ने यानी वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। तो इतनी बातें वसुदेव जी के बारे में लिखी हैं। आगे अक्रूर है, दूसरा नाम क्या है इस श्लोक में? अक्रूर। इस श्लोक में यह बताया जाता है कि कृष्ण द्वारका में आए हैं तो ये सुन करके बहुत उत्कंठित होकर के वे जो ना भागे कृष्ण का स्वागत करने के लिए। तो इसलिए एक एक व्यक्ति का नाम प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कौन क्या है, है ना। इसमें कितने नाम दिए गए हैं? एक तो है वसुदेव, दूसरे अक्रूर, और तीसरे उग्रसेन, और चौथे बलराम, और पांचवें प्रद्युम्न, और छठवें चारुदेशन, और सातवें सांब। सात नाम है, है ना। तो सातों का मेरे ख्याल से प्रभुपाद ने सातों को सातों का परिचय दिया है। तो दूसरे अक्रूर हैं, इनका परिचय दे रहे प्रभुपाद जी। क्या है ये? ये वृष्णि कुल के सेनापति और कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की, ठीक है ना। अक्रूर का नाम आता है उन लोगों की लिस्ट में जिन्होंने एक प्रकार की भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो नवधा भक्ति है इसमें से एक ही विधि के द्वारा उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। अक्रूर ने वंदनम प्रार्थना की, अर्चनम पृथु महाराज, श्रवणम परीक्षित खाली श्रवण, और कीर्तनम सुखदेव खाली कीर्तन, है ना, स्मरणम प्रहलाद महाराज खाली स्मरण करते थे, है ना, स्मरणम पाद सेवनम, लक्ष्मी जी केवल चरणों की सेवा करती हैं, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर जी, दास्यम हनुमान जी, सख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलि महाराज। तो प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं, प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं कि एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा है। तो किस समय स्तुति की अक्रूर जी ने? वृंदावन में आए, पानी के अंदर देखा, जब पानी के अंदर देखा कृष्ण बलराम को, हाँ ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे तो वो प्रार्थना कर रहे थे हृदय में कि मेरे अपराध को आप क्षमा करना, क्योंकि कंस के भेजे हुए जितने असुर मथुरा से वृंदावन गए हैं, है ना, उसी प्रकार से मैं भी जा रहा हूँ, है ना। तो बहुत चिंता कर रहे थे, बहुत चिंता कर रहे थे अक्रूर जी, है ना। और सवेरे चले और शाम हो गई चिंता करते करते। वैसे इतनी देर लगनी नहीं थी, लेकिन इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि बहुत उनको डर लग रहा था कि मैं भी उसी प्रकार से जा रहा हूँ जैसे कंस के भेजे हुए पोतना गई थी, अघासुर गए थे, बकासुर गए थे, और क्या हाल हुआ उनका, तो मेरा भी ये हाल होना है। तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी मजबूरी को आप समझो, है ना, आप जो है ना, मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, है ना। तो वो प्रार्थना करते रहे, मुझको जो है ना आप अपना चाचा मान करके और मेरा हाथ पकड़ करके स्वागत करना, इस तरह से हृदय में प्रार्थना करते थे। और शाम को फिर ऐसा ही हुआ, कृष्ण बलराम ने चाचा चाचा कह करके एक एक हाथ पकड़ा और ले गए, है ना। तो उनकी जान में जान आई कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, नहीं तो वो बहुत खतरे में समझ रहे थे कि मैं बहुत खतरे में हूँ कि कृष्ण है कंस का जो भेजा हुआ अभी तक गया है, वो कोई वापस नहीं लौटा। तो इसलिए अक्रूर जी हृदय से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम। तो ये स्तुति है, किससे प्रार्थना करते? हृदय में कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि आप तो मेरे हृदय में भी हो, सबके हृदय में बैठे हो, है ना, और मैं वृंदावन में जा रहा हूं, है? तो मैं भी आपके शत्रु का जो है मित्र हूं, है? लेकिन मेरी मजबूरी है मैं आपका शत्रु नहीं हूं, आपके शत्रु का भी मित्र हूं, आपका भी मित्र हूं। तो अक्रूर जी बहुत प्रार्थना कर रहे थे विनम्रता पूर्वक। तो इसके द्वारा उन्होंने फिर कृष्ण की प्राप्ति करी। और क्या हुआ, जब कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, देखो कितनी भक्ति का उदय हुआ, दिन भर प्रार्थना करते रहे, तो इतनी भक्ति का उदय हुआ उनको कि जैसे कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तो तुरंत रथ से कूदे और उनमें लौटने लगे और अश्रु बहाने लगे, है ना। तो पूरा शरीर उनका आंसुओं से भीग गया और पूरे शरीर में मिट्टी लग गई अक्रूर जी के, क्योंकि आंसू से भीगे शरीर में लौटे तो पूरे शरीर में ब्रज की रज लग गई, मिट्टी लग गई। तो ये अक्रूर जी जो है ना वो है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि एकाकी विधि, स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की, है ना। तो ये भक्ति की सफलता है कि उनको फिर कृष्ण के चरण चिन्ह मिले और फिर कृष्ण मिले और कृष्ण बलराम मिले, तो चाचा चाचा कहते हुए एक एक हाथ पकड़ करके और घर में ले गए, नंद महाराज से मिलाया, फिर उनका आदर सत्कार कराया, गौदान की भोजन कराया और सुलाया। इस तरह से जो ना अक्रूर जी का ना बहुत स्वागत किया और बाद में फिर अक्रूर जी को ही दर्शन दिए विशेष रूप से, यमुना जल के अंदर रथ में भी बैठे हैं और यमुना जल के अंदर भी हैं। तो ये भगवत प्राप्ति जो है ना उनको हुई है किसके द्वारा, वंदनम, वंदना के द्वारा अक्रूर जी। तो प्रभुपाद और लिखते हैं अक्रूर जी के बारे में, ये आहुक की पुत्री सूतनी के पति थे। अच्छा, आहुक वैसे ठीक है, अक्रूर जी स्वफल के नंदन कहलाते हैं, अक्रूर जी के पिता हैं स्वफल के। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का सफलतापूर्वक अपहरण करके ले गए तो इन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। अच्छा, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अक्रूर जी ने अर्जुन की सहायता की थी और कृष्ण ने तो योजना बनाई ही थी, बलराम जी विरोधी थे, बलराम जी चाहते थे सुभद्रा का विवाह किससे करना, दुर्योधन के साथ। तो कृष्ण ने बलराम जी को नहीं बताया और अक्रूर जी को जो ना अक्रूर जी को बताया, अक्रूर जी ने सहायता की अर्जुन को भगाने में कि सुभद्रा को लेकर के किस प्रकार से भागे अर्जुन, और बलराम जी की नजर से बचाया कि बलराम जी की दृष्टि ना पड़े अर्जुन के ऊपर, सुभद्रा को लेकर भागे अर्जुन। तो इन्होंने सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक अपहरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उन्हें देखने गए और अर्जुन को दहेज दिया था। द्वारका में जो ना शादी नहीं हुई, द्वारका से भाग गए अर्जुन सुभद्रा को लेकर के, फिर अक्रूर जी कृष्ण के साथ में वह वहां पर शादी कराई, कहां पर, इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में, और दहेज भी दिया वहां जा करके, क्योंकि यहाँ बलराम जी हैं, द्वारका में बलराम जी हैं। इसलिए यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। इसके बाद रूपा लिखते हैं, जब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाराज परीक्षित की माता पुत्रा के साथ ब्याहे गए, ठीक है, तो भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के ससुर आहुक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवत भक्त थे। ठीक है, अक्रूर जी के बारे में इतना प्रभुपाद ने बताया है। अब आगे कौन नाम है अक्रूर के बाद, उग्रसेन। ये वृष्णिकुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से थे और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई थे। इनका दूसरा नाम आहुक था, वसुदेव इनके मंत्री थे और इनका पुत्र कंस अत्यंत शक्तिशाली था। इस कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बैठाए गए। जब साल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोह पिंड की देखरेख का काम सौंपा गया था। तब इन्होंने लोह पिंड को खंड खंड करके द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात इन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। उग्रसेन बहुत विचारशील थे इस विषय में कि मद्यपान बिल्कुल नहीं हो, लेकिन फिर मद्यपान हुआ बाद में ना। तो भगवान कृष्ण भी ये दिखाना चाहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से क्या परिणाम होता है। तो कभी कभी भगवान इस प्रकार से भी शिक्षा देते हैं कि गलत काम किसी व्यक्ति से करवा के और परिणाम दिखलाते हैं कि ये परिणाम हुआ। अगर अपने परिवार को नष्ट करना चाहते हो तो क्या करो, शराब पियो, है ना। तो कभी कभी भगवान जो है ना इस तरीके से भी शिक्षा देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो शराब पीने की मनाही कर दी उग्रसेन ने। फिर यदुवंशियों ने शराब वहां तो उनको पीने को नहीं मिली द्वारका में, तो फिर उन्होंने मौका निकाला शराब पीने का, कहां पर, प्रभास क्षेत्र में। वहां स्नान किया, तीर्थ में स्नान किया और फिर मद्यपान किया। तत्पश्चात द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही इन्होंने कर दी थी। मृत्यु के पश्चात इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उग्रसेन के बारे में प्रभुपाद ने इतना लिखा है। अच्छा, इसके बाद क्या नाम है उग्रसेन के बाद, नाम क्या है? राम। हाँ, राम का मतलब बलराम। तो श्लोक लिखा है, आप लोगों को श्लोक देखना है। ये नहीं है कि बस समाप्त हो, श्लोक पढ़ दिया तो समाप्त, दिमाग से निकल गया। पूरे क्लास में श्लोक की चर्चा होती है, तो आप श्लोक पर ध्यान देकर के ही आप क्लास श्रवण करो। तो बलदेव जी के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, ये वसुदेव की पत्नी किससे, रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। रोहिणी नंदन या रोहिणी, रोहिणी। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तो रोहिणी को बलराम समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पोषक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ रहे। ये भगवान कृष्ण के स्वांत हैं, अतएव ये कृष्ण के ही समान उत्तम और शक्तिमान हैं। इनका संबंध विष्णु तत्व से है। ये कृष्ण के साथ द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। कृष्ण और बलराम द्रौपदी स्वयंवर में गए थे किस लिए, देखने के लिए, देखने के लिए। और जब अर्जुन ने जो है ना द्रौपदी को जीता, तो कोई पहचान नहीं पाया। इन कृष्ण बलराम से कहते हैं कि ये अर्जुन ही है, ये सब लक्षण जो है ना अर्जुन के ही हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। ब्राह्मण के रूप में थे अर्जुन, है ना। तो कृष्ण बलराम से बातचीत करते हैं अर्जुन के विषय में कि ये अर्जुन ही है। और फिर भीमसेन को भी पहचाने कि ये भीमसेन है जिसने अर्जुन की रक्षा के लिए पेड़ उखाड़ करके खड़े हो गए थे। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, जब श्री कृष्ण की सुनियोजित चाल से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण हुआ था, तो बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और उन्हें तत्काल मार डालना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े। कृष्ण ये कितना कितना नहीं करते हैं अपने भक्त के लिए। बलदेव जी के पैरों में गिर गए कृष्ण कि मेरे मित्र की रक्षा करो आप। बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और इतना क्रुद्ध ना होने की विनती की, प्रार्थना की कि आप इतना क्रुद्ध मत होइए। तब कहीं बलदेव प्रसन्न हुए थे, इसी प्रकार वे कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। इसलिए इसमें बलराम की विशेषता क्या लिखी है, अद्भुत विक्रम, अद्भुत पराक्रम। बलराम जी का पराक्रम अद्भुत है, ऐसा किसी में नहीं देखा गया आज तक, किसी का ऐसा पराक्रम नहीं देखा गया, अद्भुत पराक्रम। क्योंकि जब सांब को ही बंदी बना लिया था ना, सांब को बंदी बना लिया था, हाँ दुर्योधन ने स्तंभ को ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर था
तो
हाँ कृष्ण के पुत्र जो स्तंभ थे उन्होंने हरण कर लिया लक्ष्मणा का। तो सब पौरव जो है बड़े गुस्सा हुए कि ये लड़का बड़ा ढीठ है, हैं बड़ा बेशरम है, हैं और कन्या तो स्वयंवर में है, जिसको चाहे उसको गले माला पहनाए, तो इसको तो नहीं चाहती थी और इसने अपहरण कर लिया हैं। तो फिर बाद में युद्ध किया।
सांबा के बेटे नहीं थे वो?
नहीं, सांब सांब ही थे, कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की पुत्री। ये तो बराबरी है ना, कृष्ण और दुर्योधन बराबर की पीढ़ी के हैं, तो उनके पुत्र और उनकी पुत्री, तो संबंध तो बिल्कुल सही था। लेकिन उन्होंने नहीं 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 आप भ्रमित हैं, प्रद्युम्न की कथा दूसरी है, सांब की कथा दूसरी है। तो सांब लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री थी। तो भगवान कृष्ण ने जब सुना कि सांब को बंदी बना लिया, तो कृष्ण ने तो यदुवंशियों को आदेश दिया कि चलो सेना लेकर के लड़ाई करेंगे। लेकिन बलराम जी कहते हैं कि नहीं नहीं सेना की जरूरत नहीं है, दुर्योधन हमारा शिष्य है, हमारा मित्र है, हम उसको समझाएंगे। दुर्योधन के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार था बलराम जी का, समझाएंगे। तो इसलिए कुछ बड़े वृद्ध जो है यदुवंशी उनको लेकर के गए समझाने के लिए, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए बलराम जी का भी तिरस्कार कर दिया। तब फिर बलराम जी ने कहा कि अब इनको सिखाना पड़ेगा लातों से। तो फिर उन्होंने हल से पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ करके और गंगा नदी में बहाना चाहा, है ना। प्रभुपाद जमुना लिख रहे हैं, लेकिन वैसे वहाँ गंगा नदी है जहाँ हस्तिनापुर माना जाता है, तो वहाँ मेरठ की साइड में गढ़गंगा, तो वो है जो भी हो। तो हस्तिनापुर को जो है झुका दिया, तो जब बड़े बड़े महल है वो गिरने लगे, पूरी हस्तिनापुर नगरी को गंगा जी में बहाना चाहा था उन्होंने। तो फिर सांब को लक्ष्मणा को आगे करके लाए और दहेज की वस्तुएं लेकर के आए, चरणों में गिरे और सब प्रार्थना करने लगे। तो ऐसा पराक्रम, कुछ सेना की जरूरत नहीं है, ना सेना की जरूरत है ना किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, उनका बस अपना हल से ही सब काम कर देते हैं। तो अद्भुत पराक्रम है बलराम जी का। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब फेंकना चाहते थे नदी में हस्तिनापुर को, तब कौरवों ने उनके चरण कमलों के शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया। ये वास्तव में कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के सातवें पुत्र थे। देवकी के आठ पुत्रों के जब नाम गिनाए सुखदेव गोस्वामी ने, तो सातवां पुत्र बताया बलराम जी को, और रोहिणी के जो पुत्रों की संख्या बताई तो पहला बलराम जी को बताया। तो परीक्षित को फिर बड़ा संदेह हुआ, रोहिण्यास्तन्या प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना, कि आपने रोहिणी का पुत्र बताया भगवान बलराम को, फिर देवकी के गर्भ से कैसे संबंध हुआ उनका, कुतो देहांतरम विना, बिना दूसरे देह के, बिना दूसरा देह स्वीकार किए उन्होंने फिर देवकी के साथ में पुत्र कैसे हुए बलराम जी। हाँ तो प्रभुपाल लिखते हैं लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। योग माया के द्वारा। अतएव इनका अन्य नाम संकर्षण है, संकर्षण, गर्भ संकर्षणात्म प्राहु संकर्षणम भुवि, कि गर्भ का संकर्षण हुआ, देवकी के गर्भ से उनको आकर्षित करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाला गया, इसलिए ये जो न संकर्षण कहलाते हैं, जो श्री बलदेव के स्वांश भी हैं, इनका अन्य नाम संकर्षण है। हाँ संकर्षण जो है बलदेव जी के स्वांश हैं, संकर्षण जो चतुर्व्यूह में है, संकर्षण बलदेव जी के स्वांश हैं। चूंकि ये कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव ये बलदेव कहलाते हैं। हाँ बल, प्रभुपाद जी बता रहे हैं दो कारणों से इनको बलराम कहते हैं, बल क्यों, एक तो कृष्ण के समान बलवान है और दूसरा क्या है, भक्तों को आध्यात्मिक बल देते हैं जिससे भक्त कृष्ण की शरण ले सकें। हाँ? तो कृष्ण तो कहते हैं कि सब धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, लेकिन आपके पास बल ही नहीं है कि आप छोड़ सको सब धर्मों को। उसके लिए भी तो बल चाहिए, सब धर्मों को छोड़ करके कृष्ण के शरण में जाएं, कहाँ बल है आपके पास? आपके पास बल ही नहीं है, तो बल कौन देगा? बलराम जी देंगे बल। हाँ, इसलिए वो कौन सा वेद मंत्र है जिसमें बताया ना, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, कि आत्मा, आत्मा का नाम कृष्ण है, तो कृष्ण जो है ना बल के बिना नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ बल का मतलब शारीरिक बल नहीं है, यहाँ बल का मतलब बलराम है। तो बलराम के बिना कृष्ण नहीं आप प्राप्त कर सकते, कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते, आपको शक्ति चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा के कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। हाँ, लेकिन इसकी जो व्याख्या है तो दूसरे विद्वान कैसे करते हैं कि मांस खाओ, मुर्गा खाओ, अंडा खाओ। हाँ, क्योंकि वेदों में लिखा है नायम आत्मा बलहीन लभ्या, कि बल राम के बिना नहीं प्राप्त हो सकते हैं बलराम, है ना। तो बड़े दुख की बात है, विवेकानंद ने भी जो है ना कुछ इस तरह की बातें कही है, है ना, कि आप जो है मतलब शक्ति, शारीरिक शक्ति अर्जित करो। गीता भागवत के पाठ को छोड़ करके क्रिकेट और हॉकी ये सब खेलो, मतलब शक्ति अर्जित करो। ऐसे भी शब्द हैं विवेकानंद के। तो लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि बल का अर्थ है भौतिक शक्ति नहीं, अभी तो आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्राप्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है। और बलदेव समस्त भक्तों के साथ मिलकर अनेक असुरों को मारा था, विशेषतः तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। तालवन में भवन रूपा सुन रहे, तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। ये धेनुकासुर था, इसको कृष्ण नहीं मारते हैं, बलराम मारते हैं। इसका एक कुछ कारण है, क्योंकि ये बलि का पुत्र है, साहसिक, जिसको दुर्वासा जी ने सांप दिया गधा बनने के लिए, तो ये धेनुकासुर ये गधा बना। तो कृष्ण क्यों नहीं मार सकते इसको? हाँ, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में आगे मैं किसी को नहीं मारूंगा, है ना। तो प्रहलाद जी के वंश का है ये कौन? धेनुकासुर। ये गधा जो है प्रहलाद जी के वंश का है क्योंकि ये बलि का पुत्र है, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, बलि का पुत्र साहसिक, तो कृष्ण नहीं मार सकते हैं, इसलिए बलराम के हाथों मरवाया इस गधे को, है ना। तो बलराम जी ने, प्रभुपाद लिखते हैं तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। और प्रभुपाद जी बलराम जी के बारे में काफी बातें बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे निरपेक्ष बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे तो भी ये निरपेक्ष बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच में गदा युद्ध हुआ तो भी ये वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन के जांग पर या कमर के नीचे प्रहार किया तो वे उनसे अप्रसन्न हुए और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। भीम से अरुचि उत्पन्न होने से इन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और इनके जाते ही दुर्योधन भूमि पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का मृतक संस्कार किया क्योंकि ये उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि ये संस्कार करना उनके बस की बात नहीं थी। इसके बाद प्रद्युम्न की बात आती है। प्रद्युम्न जी ने, ये इन प्रधान सेनापतियों में से थे जिन्होंने साल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए थे। इनका सारथी इन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था और बड़े दुखी थे। जब सारथी जो है ना इनको इनकी सुरक्षा के लिए ले आया था युद्ध भूमि से, तो इन्होंने बहुत डांटा था अपने सारथी को। इन्होंने पुनः सालव से युद्ध किया और विजयी हुए। इन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। ये भगवान श्री कृष्ण के चार पूर्णांशों में तीसरे हैं। पहले हैं वासुदेव चतुर्व्यूह, दूसरे संकर्षण, तीसरे प्रद्युम्न, चौथे अनिरुद्ध, तो तीसरे हैं पूर्णांशों में। इन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधु घाती युद्ध में ये विष्णुओं के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद इन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। प्रद्युम्न की चर्चा इसके बाद क्या है नाम? प्रद्युम्न के बाद क्या है? चारुदेशन रूपा लिखते हैं। ये भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के पुत्र थे। ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों और पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविनिधिक से युद्ध करके उसे मार डाला। तो चारुदेशन किसके पुत्र हैं? भगवान कृष्ण के। और माता कौन है? रुक्मिणी है ना। तो रुक्मिणी के कितने पुत्र हैं कुल मिलाकर के? 10। श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई है ना। तो प्रद्युम्न से छोटे चारुदेशन है। चारों बहुत हैं। तो उसमें प्रद्युम्न के बाद ये है। अच्छा, इसके बाद चारुदेशन के बाद कौन है? सांबो जाम्बवती सुतः। तो प्रभुपाद लिखते हैं सांबे के बारे में, ये यदुकुल के महान सूरवीरों में से थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे तो सात्यकी ने बलदेव से इनके गुणों का गान किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से लोह पिंड मूसल उत्पन्न होगा जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल शाम के गर्भ से एक बड़ा लोह पिंड यानी मूसल उत्पन्न हुआ जिसे उग्रसेन की उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ जिसमें सांब मारे गए। सांब का जो चेहरा था वो बहुत सुंदर था, इसलिए यदुवंशियों ने इनको जो है स्त्री का रूप बना दिया और ले गए ऋषियों के सामने और बोले कि स्त्री जो है ना शर्माती है आपसे बात करने में, लेकिन ये जानना चाहती है कि ये पुत्र की माँ बनेगी या पुत्री की माँ बनेगी। तो ऋषियों ने जो है ना उनको पसंद नहीं आया इस प्रकार हंसी मजाक है ना। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हंसी मजाक किसके साथ करना किसके साथ नहीं करना, कब करना कब नहीं करना है ना। हर व्यक्ति के साथ हंसी मजाक नहीं करना, हर समय हंसी मजाक नहीं करना। तो ये भी शिक्षा भगवान ने दी है। इन लीलाओं के द्वारा भगवान कई शिक्षाएं देते हैं। शराब पीने का ये परिणाम है और ब्राह्मणों के साथ तपस्वी और विद्वान और गंभीर ब्राह्मणों के साथ में हंसी मजाक करना है ना बहुत घातक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस तरह भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर लेटना बैठना खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़े। तो यहाँ पर क्या लिखा है इस श्लोक में कि ये सात नाम जो दिए गए हैं है ना, तो इन्होंने क्या किया? प्रहर्ष वेगो छसित है, प्रहर्ष वेग उच्छसित है। प्रहर्ष का मतलब है हाँ प्रकृष्ट रूपेण हर्ष, बहुत ज्यादा हर्ष, उसको प्रहर्ष बोलते हैं। हर्ष में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है तो प्रहर्ष बोलते हैं। प्रहर्ष के वेग से, तो जो तीव्र हर्ष हुआ उससे उनके शरीर में वेग उत्पन्न हुआ, वेग उत्पन्न हुआ, उस वेग से उच्छसित है यानी उल्लंघन कर लिया। क्या उल्लंघन कर लिया? हाँ, शयन आसन भोजना, शयन माने सोना। हाँ यहाँ पर वास्तव में सोना नहीं है यहाँ पर, हाँ क्योंकि दिन में तो कोई सोने का प्रश्न ही नहीं उठता है दिन में सोने का प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन यहाँ पर शयन का मतलब विश्राम है, शयन आसन भोजन। तो कुछ इनमें से विश्राम कर रहे थे और कुछ बैठे हुए थे और कुछ भोजन कर रहे थे, इन तुरंत ही छोड़ दिया, भोजन के बीच में भागे और आसन के बीच में भागे या शयन के बीच में भागे, क्योंकि भोजन के बाद आसन और शयन होना चाहिए, भोजन के बाद आसन कुछ देर बैठना चाहिए या वज्रासन करना चाहिए भोजन के बाद, ये भोजन को पचाने के लिए बहुत जो है ना लाभदायक होता है, तो कुछ आसन करना चाहिए और कुछ शयन करना चाहिए, कुछ विश्राम भी करना चाहिए। कहा जाता है कि दाहिनी करवट में 8 श्वास लेना, भोजन के बाद आप 10 कदम चलो टहलो, इसके बाद वज्रासन पर बैठो कुछ देर, और इसके बाद फिर शयन करो, तो दाहिनी करवट में 8 श्वास लेना, फिर सीधे लेट करके 16 श्वास लेना, फिर बाईं करवट में 32 श्वास लेना, तो ये भोजन जो है ना फिर सेट हो जाता है सही सही, और उसका फिर पाचन अच्छी प्रकार से होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है शयन आसन भोजना, तो यहाँ पर शयन का मतलब वो बिस्तर में मतलब ऐसे लेट नहीं गए कि बस निद्रा के अधीन हो जाएंगे, ये वो शयन नहीं है, इस प्रकार का शयन नहीं है। दिन में तो सोना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर शयन का मतलब विश्राम है, जो कि कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, है ना। कुल मिलाकर के 8, 16 और 32 श्वास लेनी है। कितने सांस हो गए? 8, 16, 24 और 32 56 श्वास, ठीक है ना। इतना विश्राम भोजन के बाद कम से कम लेना चाहिए, है आधा घंटा नहीं, आधा घंटा से कम, तो जो भी हो मतलब यह है कि ज़्यादा शयन नहीं करना चाहिए, और भोजन के बाद तो सोना बहुत ही खतरनाक होता है, भोजन के बाद शयन सोना बहुत खराब होता है, शरीर बहुत खराब होता है, ये पूरा शरीर एकदम वो हो जाता है, खराब हो जाता है इस तरह से भोजन के बाद फिर, और वो जो भोजन भी है ना, तो भोजन भी पेट में वो जो है ना ठीक से वो नीचे नहीं जाएगा, आप समझे ना, पाचन जो है ना, भोजन का पाचन ठीक से होता है जब आप थोड़ा चलते फिरते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा जो है ना विश्राम होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कृष्ण आए तो तुरंत वो भागे, तो कृष्ण भी द्वारका में जब आए हैं, प्रवेश किया है, तो भगवान कृष्ण भी जो है ना मतलब ऐसे समय पर आए हैं जिस समय की किसी प्रकार की असुविधा ना हो द्वारकावासियों को, तो द्वारकावासी जो है ना उनका स्वागत करेंगे, तो वो समय ऐसा था कि कुछ लोग भोजन कर रहे थे, कुछ लोगों ने भोजन कर लिया था, तो भोजन के बाद आसन पर बैठे थे, कुछ लोग शयन कर रहे थे, तुरंत ही भागे, है ना, तो वो समय ऐसा था। आप कोई प्रश्न है किसी का या कोई चर्चा आप लोग कर सकते हैं आपका।
जैसे अब लोग शराब पीते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, आप शराब पीते हो तो क्या करना
है? उनका प्रश्न है कि जैसे लोग शराब पीते हैं तो हम उन्हें क्या बोले कि वो शराब छोड़े। देखिए, बोलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शराब की जो लत है वो बड़ी खतरनाक होती है और बहुत ख़राब होती है, तो बोलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा हो, उसके बहुत अच्छे संस्कार हों, तो बोलने से भी शराब छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए तो बहुत अच्छे संस्कार होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो ना छोड़ाया, अमेरिका में भी कोई सोच भी नहीं सकता था, अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी और प्रभुपाद ने छुड़ा दिया बिना कुछ पैसे के, है ना, और अमेरिकी सरकार नहीं छुड़ा पा रही थी, है ना, तो उन्होंने प्रभुपाद जी यही कहा कि जब आप इनको अच्छा काम नहीं दोगे तो ये खराब काम करेंगे ही, और अच्छा काम दिया हमने तो उन्होंने खराब काम छोड़ दिया। अच्छा काम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो अच्छा काम दिया। ये अमेरिकी सरकार कहाँ अच्छा काम देती है, अमेरिकी सरकार ने कोई अच्छा काम तो दिया नहीं, है ना, तो वो जो है ना गलत काम करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको अच्छा काम दिया तो उन्होंने गलत काम छोड़ दिया, है ना, तो गलती किसकी है? किसी व्यक्ति को माता पिता गुरु नहीं बनना चाहिए अगर अच्छा काम नहीं दे सकते, है ना, या राजा नहीं बनना चाहिए, सरकार नहीं बनना चाहिए, अगर अच्छा काम नहीं दे सकते हैं तो आप किसी के माता पिता और गुरु और संबंधी भाई बंधु मत बनो, है ना। अच्छा काम दो उनको। और कोई प्रश्न किसी का आपका? हाँ,
कृष्ण के जो पुत्र है चारुदेशन, उन्होंने महाभारत में किसकी तरफ से युद्ध,
इनका प्रश्न है कि कृष्ण के पुत्र जो चारुदेशन है, इन्होंने महाभारत में किसकी तरफ से युद्ध लड़ा है? नहीं, महाभारत में चारुदेशन का नाम नहीं आता है। कृष्ण की जो है ना एक विशेष सेना थी संसप्तकों की, तो वो कृष्ण ने दी थी दुर्योधन को, और कृष्ण स्वयं जो है ना उसमें थे, और बाकी जो है ना यादव लोग वो उसमें नहीं आए थे, या कृष्ण के संबंध नहीं आए थे उस युद्ध में। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, आप
बलराम जी के अधिकारी है, और व्यास जी जो है अधिकारी पुरुषों के लिए।
धन्यवाद। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि बलराम जी नरो महर्षि उनका वध करके, और उग्र सभा जो उनके पुत्र थे उनको व्यासन पर बैठा करके और अधिकार दिया है। हाँ, लेकिन बलराम जी ने साथ साथ ऋषि मुनियों ने ये कहा कि ये जो है ना आपने अनुचित किया है, तो बलराम जी ने यह भी माना कि ठीक है मैंने अनुचित किया है। तो ऋषि मुनि बोले आपके ऊपर तो वेदों का कोई शासन नहीं है कि आप को कोई दंड दिया जाए, शास्त्र से आप ऊपर हैं, लेकिन तो भी आप स्वीकार करिए प्रायश्चित, तो शिक्षा के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करिए। तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, मैं शिक्षा देने के लिए संसार को मैं प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ, आप लोग बताइए कि क्या आप चाहते हो, है ना। तो बलराम जी ने फिर मतलब ऋषियों ने यह भी प्रार्थना की कि हमने इनको 1000 साल की आयु दी थी, तो हमारा भी जो वचन है वो भी आप सत्य करो, और आपने इनका वध किया है तो उसको भी सत्य करो। तो फिर बलराम जी ने कहा ठीक है, दोनों बातें सत्य करूंगा। तो कैसे सत्य करें? आपने मारा है तो ये भी सत्य होना चाहिए, और हमने इनको 1000 साल की आयु दी वो भी सत्य होना चाहिए। तो बलराम जी ने फिर क्या कहा कि शास्त्रों का वचन है कि पुत्र ही आत्मा, हाँ आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, व्यक्ति की आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, तो इनके पुत्र को हम 1000 साल की आयु देते हैं और पूरा ज्ञान देते हैं, 18 पुराण इनका पुत्र सुनाएगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है ना वचन दिया, अपने अपने वचन को पूरा किया और ऋषि मुनियों के वचनों को पूरा किया, और फिर प्रायश्चित रूप में बलवल असुर का वध किया, जो कि नैमिषारण्य में उन ऋषियों का यज्ञ भंग करने के लिए आता था। अच्छा, आपका प्रश्न? हाँ, बलराम जी कृष्ण से कितने बड़े थे? एक एक साल के अंतर में देवकी ने 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न की, एक एक साल के अंतर में। तो आप समझ लो कि 1 साल और 7 दिन ज्यादा है बलराम जी। बलराम जी का जो जन्म है वो पूर्णिमा को होता है, और अभिनित्यानंद को भूल जाऊं क्योंकि फिर और ज़्यादा मिस्टर हो जाएगी बात है। तो बलराम जी का जन्म पूर्णिमा को होता है, और कृष्ण का जन्म फिर 8 दिन बाद होता है, तो 1 साल 8 दिन बलराम जी बड़े हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, आपका प्रश्न? इनका प्रश्न है कि द्वारका में वही लोग रह सकते हैं जो कृष्ण के परम भक्त हैं, तो मदिरा पीने वाले कैसे? नहीं, बलराम जी भी वैसे मद्यपान करते थे, और क्षत्रियों के लिए जो है वैसे कुछ ये गलत नहीं माना जाता था। ये चारों के चारों जो नियम हम पालन करते हैं, तो क्षत्रिय लोग चारों नियमों को तोड़ते थे, चारों नियम तोड़ते थे, मतलब जुआ और मद्यपान और व्यभिचार भी, एक दृष्टि में व्यभिचार भी और मांसाहार, ये सब जो ना क्षत्रियों के लिए जो ना वो अनुमति थी। लेकिन फिर परीक्षित ने जब 4 स्थानों में कलयुग को जो ना स्थान दिया, तब से जो ना फिर प्रभुपद जी कहते हैं कि अब जो है क्षत्रियों के लिए भी अब जो ना ये इंकरित है, और अगर कलयुग से बचना चाहते हैं तो इन इनसे बचना चाहिए जैसे को। ठीक है ना। अच्छा, और किसका प्रश्न? अच्छा, आप बोलो। हाँ, हाँ, इनका प्रश्न है कि जब महाभारत एक विश्व युद्ध था तो सब क्षत्रियों को भाग लेना जरूरी था, तो बलराम जी ने बहाना बना लिया कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो कृष्ण के जो बागे पुत्र हैं उनका फिर क्या कारण था? नहीं, यहाँ पर बात यह है कि जितने भी घर के परिवार के लोग हैं वो सब युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि परिवार के सब लोग आने, सब लोगों की आवश्यकता नहीं होती किसी युद्ध में। अगर पुत्र जाएगा तो पिता नहीं जाएगा, पिता जाएगा तो पुत्र नहीं जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है ना। लेकिन परिवार के सब लोग अगर भाग लेंगे युद्ध में तो फिर वो परिवार कैसे चलेगा, वहां की भी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि बलराम संकर्षण ये दो नाम एक ही है, अलग अलग हैं। बलराम जी का नाम संकर्षण है, इसके कुछ कारण हैं। बलराम जी को संकर्षण कहा जाता है, इसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो यह है कि गर्भ से आकर्षण हुआ, इनका इसलिए संकर्षण कहे जाते हैं, है ना। और गर्ग जी ने जो है संकर्षण नाम इनको दिया, तो उन्होंने कहा कि परिवार को जो है ना, ये अपने परिवार में जो मन मुटाव है उसको दूर करेगा ये बालक, तो संकर्षण मतलब जोड़ेगा, हैं, जो दूर दूर हैं उनको जोड़ेगा, तो इसलिए संकर्षण ये कहलाते हैं। और संकर्षण इनके अंश हैं, इसलिए भी इनको संकर्षण कहते हैं। ये तीन कारण कारण हैं कि बलराम जी को संकर्षण कहा जाता है। बलराम जी के पूर्ण अंश संकर्षण भी हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? आपका? हाँ,
जैसे ये शराब के बारे में बता रहे थे सर, तो मेरा एक एग्जांपल मतलब कि जैसे कृष्ण लीला जो है ना, उसमें क्या होता है कि जो ये राधा रानी या सब होते हैं वो मतलब शराब तो नहीं पीते, वो खाली शहद पीते हैं, वो शराब नहीं होता। यहाँ पे जो भौतिक जगत में पीते हैं वो शराब होता है, जिससे नशा चढ़ता है, पर वो नशा हमें मतलब और घेरता है इस जगत में, जबकि जो कृष्ण लीला में जो नशा होता है वो मतलब कृष्ण प्रेम का नशा होता है, जो शहद होता है, जो मतलब बहुत ही
इनका सुझाव है कि जो शराब पीते हैं ये तो जो ना बहुत गर्हित है, बहुत निंदनीय है, लेकिन ब्रज लीला में जो है राधा रानी या कृष्ण की जो भक्त हैं वो मधु पीते थे, मतलब शहद पीते थे, हैं? बलराम जी ने वारुणी पी थी, वारुणी नाम की मदिरा पी थी बलराम। तो क्षत्रियों के लिए जो ब्रजवासी हैं ये वैश्य हैं, ब्रज में जो है भगवान लीला करते हैं वैश्यों की, तो वैश्यों के लिए जो है ना ये अनुमति नहीं है कि वो जो है ना शराब और व्यभिचार मांसाहार जुआ नशा, लेकिन क्षत्रियों के लिए जो है ना कुछ स्थितियों में अनुमति है, है ना। तो बलराम जी जब मथुरा से गए थे तब उन्होंने वारुणी पी थी, क्योंकि उस समय वो क्षत्रिय के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन थे तो उस समय वो वैश्य बालकों के रूप में लीला कर रहे थे, सबकी नजरों में ये वैश्य के बालक हैं, मतलब कोई जानता था कोई नहीं जानता था कि वसुदेव के पुत्र हैं बलराम जी। तो इस तरह से जो है मतलब भगवान जब जिस समय लीला करते हैं उस समय के जो धर्म है उनकी स्थापना करने के लिए भगवान सब कार्य करते हैं। तो भगवान के चरित्र से कोई भी व्यक्ति ऐसी उंगली नहीं उठा सकता है कि नहीं ये गलत काम है। अगर कोई कहता है कि ये रासलीला करते थे, पराई स्त्रियों का स्पर्श करते थे, तो वो सब बाल लीला है, कोई भी नहीं विचार कर सकता था कि ये भी संबंध हो सकते हैं कृष्ण के। आप समझे, 11 साल की अवस्था तक ही कृष्ण वृंदावन में रहे, जो कुछ भी चरित्र उनके हैं गोपियों के साथ में राधा रानी के साथ में 11 साल की अवस्था तक के ही, लेकिन वो नव युवक बन जाते थे वो दूसरी बात है, लेकिन बाकी जो ना लोक दृष्टि से कोई दोष नहीं था कृष्ण के इस चरित्र में। आपका प्रश्न, अच्छा, इनका प्रश्न है कि बलराम जी की पत्नी रेवती के बारे में नहीं बताया गया ना? रेवती जो है महाराज रेवत की पुत्री थी, मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, या भागवत में ककुद्मी बताएंगे, ककुद्मी की पुत्री थी। तो ये जो मनमंत्र शुरू हुआ था तो उस समय शुरू में ही जो है ना ये राजा थे यहाँ के कुशस्थली के या आनर्त देश के राजा थे, तो अपनी पुत्री के जो है ना पति को चुनने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे बताने के लिए कि इस उपयुक्त पति कौन है। तो वहां 20 मिनट ठहरे वो ब्रह्मलोक में, और 12 करोड़ साल बीत गए है ना, 28 बार चारों युग बीत गए। तब ब्रह्मा जी हंसे और बोले अभी बलराम जी हैं उस स्थान में जहां से तुम आए हो, वो स्थान तो सब उजड़ गया था, तो कृष्ण ने द्वारका बसा ली थी वहां। तो 12 करोड़ साल के बाद आए तो अपनी पुत्री का विवाह किया बलराम जी के साथ में, और फिर वन में चले गए तपस्या करने के लिए, है ना। और फिर काफी चरित्र है रेवती का, पिछले जन्म में ज्योतिषमती थी, चाक्षुष मनु की कन्या थी, और उसने जो ना तपस्या की थी शेष जी को पति रूप में प्राप्त करने की। तो पहले मैं कभी विस्तार से कथा सुना चुका हूँ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताय सीताराम विष्णु हनुमान की जय।
राम हरे हरे।